ശിവം ശുദ്ധബുദ്ധം പരം വിശ്വനാഥം ശിവം ശുദ്ധബുദ്ധം പരം വിശ്വനാഥം ന ദേവോ ന ബന്ധുർന കർമാന കർതാ ന ഗംഗം ന സംഗം ന സ്വേക്ഷാ ന കായം ഗംഗം സംഗം ന സ്വേക്ഷാ ന കായം ചിദാനന്ദ രൂപം നമോ ഗീതരാഗം രൂപം നമോ ഗീതരാഗം ന ബന്ധോ ന മോക്ഷോ ന രാഗാദി ദോഷോ ന ബന്ധോ മോക്ഷോ ന രാഗാദി ദോഷോ ന യോഗം ന ഭോഗം ന വ്യാധിർന ശോകം ഭോഗം ന വ്യാധിർന ശോകം ന കോപം ന മാനം ന മായാ ന ലോഭം ചിദാനന്ദ രൂപം നമോ ഗീതരാഗം രൂപം നമോ ഗീതരാഗം ന ഹസ്തൗ ന പാദൗ ന ഘ്രാണം ന ജിഹ്വാന ന പാദൗ ന ഘ്രാണം ന ജിഹ്വാന ചക്ഷുഃ ചൂർണ കർണം ന വസ്ത്രം ന നിദ്രാണ കർണം ന വസ്ത്രം ന നിദ്രാണ സ്വാമീ ന ഭൃത്യോ ന ദേവോ ന മർത്യാന ന ദേവോ ന മർത്യാ ചിദാനന്ദ രൂപം നമോ ഗീതരാഗം നമോ ഗീതരാഗം ന ജന്മം ന മൃത്യു ന മോഹം ന ചിന്താന മൃത്യു ന മോഹം ന ചിന്താന ക്ഷുദ്രോ ന ഭീതോ ന കാർഷ്യം ന തന്ദ്രാന കാശ്യം ന തന്ദ്രാ ന സ്വേദം ന ഖേദം ന വർണം ന മുദ്രാന ഖേദം ന വർണം ന മുദ്രാ ചിദാനന്ദ രൂപം നമോ ഗീതരാഗം രൂപം നമോ ത്രിദണ്ഡേ ത്രികണ്ഡേ ഹരേ വിശ്വനാഥം ത്രികണ്ഡേ ഹരേ വിശ്വനാഥം ഋഷികേശ വിധ്വസ്ത കർമാദിജാലം വിധ്വസ്ത കർമാദിജാലം ന പുണ്യം ന പാപം ന ചാക്ഷാദിഗാത്രം പാപം ന ചാക്ഷാദിഗാത്രം ചിദാനന്ദ രൂപം നമോ ഗീതരാഗം രൂപം നമോ ഗീതരാഗം ന ബാലോ ന വൃദ്ധോ ന തുച്ഛോ ന മൂഢോ ബാലോ ന വൃദ്ധോ ന തുച്ഛോ ന മൂഢോ ന സ്വേദം ന ഭേദം ന മൂർത്തിർന സ്നേഹ ന ഭേദം ന മൂർത്തിർന സ്നേഹ ന കൃഷ്ണം ന ശുക്ലം ന മോഹം ന തന്ദ്രാ ന ശുക്ലം ന മോഹം ന തന്ദ്രാ ചിദാനന്ദ രൂപം നമോ ഗീതരാഗം ൂപം നമോ ഗീതരാഗം നാദ്യം ന മദ്യം ന അന്തം ന ചാന്യ ന അന്തം ന ചാന്യ ന ദ്രവ്യം ന ക്ഷേത്രം ന കാലോ ന ഭാവ ന क्षेत्रं न कालो न भाव। ऐसी कई ना। अरे भैया आप बता दिया करें मुझे, लाइट आ गई इसकी, मेरा वॉल्यूम मैंने थोड़ा तेज कर लिया था, अब ये तेज हो गया। तो ये एक इस तरह की भक्ति है जिसमें नहीं मांगते हुए भी और सब कुछ प्राप्त करने का विश्वास है। इतनी विश्वास से भर के की गई है कि जैसे अपन कोई बात जब करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा तो सो डेफिनेट होगा ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ऐसा वादीराज महाराज अत्यंत विश्वास से भर करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसकी घटना अपन सबको मालूम है कि वादीराज महाराज को अत्यंत तपस्या करने के दौरान, उस तपस्या के दौरान ही उनको व्याधि हो गई थी, कुष्ठ रोग हो गया था। और राजा के दरबार में जब इस बात की चर्चा चली तो जैन साधुओं की निंदा की दृष्टि से किसी ने कहा कि अरे काहे की साधना और काहे के साधु, उनको तो देह कुष्ठ रोग तक हो जाता है। तो जो वहीं पर सेठ थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे महाराज तो अत्यंत सुंदर देह को धारण करने वाले होते हैं। तो अन्य लोगों ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, चल के देख लेंगे। अब सेठ जी ने कहा कि ठीक है, राजा साहब के साथ जाएंगे देखने के लिए। सेठ जी को मालूम नहीं था कि वाकई में असाता के उदय में, क्योंकि व्याधि होना कोई ऐसा तो है नहीं, तपस्या से तो व्याधि का कोई संबंध नहीं, सब उसका तो संबंध है आपके असाता और साता से। तो असाता के उदय में व्याधि हो गई थी और सेठ जी जब पहुंचे तो देखा कि सारा शरीर जो है वो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। तो महाराज को कहा कि महाराज हम तो राजा से ये कह के आए हैं कि अत्यंत सुंदर शरीर होता हमारे मुनि महाराज का और वो कल देखने आएंगे, और अब तो मेरी और मेरे धर्म की हंसी ना हो जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं। और शाम को उन्होंने भगवान की स्तुति ये एक ही भाव स्तोत्र के रूप में की थी, और सुबह होते ना होते और उनकी सारी देह सोने के समान उज्जवल हो गई थी। एक छिंगली में उन्होंने थोड़ा सा शेष रहने दिया था। जब राजा अपने अन्य मंत्रियों के साथ और सेठ जी के साथ आए तो देखा कंचन के समान सुंदर देह है, कौन कहता है, ये तो सब झूठ बोलते हैं, जिन जिन ने ऐसा कहा है कि महाराज को कुछ रोग है उन सबको फांसी चढ़ा दो। ऐसा जैसे ही कहा तो महाराज ने कहा कि ठहरो, इन्हें ने जो कहा है वो सत्य है, मुझे कुष्ठ रोग था लेकिन अब नहीं है, और अगर चाहिए तो प्रमाण है उंगली में कि था पहले, उनको आप सजा नहीं दें। देखो निंदक और बंदक दोनों के प्रति साम भाव है, निंदक की भी सुरक्षा और जो सेठ जी हैं जो भक्त हैं उनका भी, उनकी भी लाज रह गई, और जिन्होंने निंदा करी थी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए था लेकिन उनको भी पनिशमेंट नहीं दिया, उनकी भी सेफ्टी कि नहीं नहीं ये भी सही है। वास्तव में साधुता तो यही है, और ऐसी घटना इसके पीछे छुपी हुई है। देखें अपन कैसे भक्ति कर रहे हैं वादीराज महाराज, क्या वैसी भक्ति की ऊंचाई अपने भीतर आ सकती है, कोशिश तो करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, एक ही भावम गत इव, एक मेक हुए के समान, एक ही भावम गत इव, एक मेक हुए के समान। कौन सी चीज एक मेक हो गई भाई, तो कहते और किसके साथ हो गई, तो कहते माया, मेरे साथ जो एक मेक पने को प्राप्त हो गए हैं वे क्या हैं, यह स्वयं कर्म बंधो, अपने आप ही जो कर्म का बंध है वो मेरे साथ एक ही भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात एक मेक पने को, कर्म और आत्मा एक मेक हो गए हैं। भगवान भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और घोरम दुखम भव भव गतो, और जन्म जन्म में ये मेरे साथ जो एक मेक पने को प्राप्त हो गए हैं कर्म, वो मुझे बहुत दुख देते हैं, ठीक है, और दुर्निवारा करोती, और उनको दूर करना बहुत कठिन है। भगवान से कह रहे हैं
और फिर भगवान तस्य अपि अस्य त्वयि जिन रवे, हे जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य, हम आपसे क्या कहें, हमें तो ये मालूम है कि आपकी अगर कोई ऐसी स्थिति में भी भक्ति करे तो मुक्ति मुक्त चेत, आपकी भक्ति करने से कर्म के बंधन से भी कोई चाहे तो मुक्त हो सकता है। पहले ऐसी भगवान की भक्ति कर ली, क्या भक्ति कर ली, भगवान मेरे साथ कर्मों का ये जो बंधन हुआ है वो मुझे भाव भाव में भारी दुख देता है और उसको दूर करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मैं अपने कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकता हूं यदि आपकी भक्ति करूं। तो जब आपकी भक्ति से मैं कर्मों के बंधन से दूर हो सकता हूं, कितना परफेक्ट लॉजिक है, तब फिर जे तुम शक्यो भवति न तया को अपराह ताप हेतु, तब और कौन सा इस संसार का संताप है जो कि आपकी भक्ति से जीता ना जा सके, अर्थात मैं बाकी सब चीजें भी आसानी से जीत सकता हूं। मुझे और कोई संताप अगर हो भी गया है, जब मैं आपकी भक्ति से अपने कर्मों को काट सकता हूं, तो मैं ये छोटी मोटी जिसको अपन कहते हैं ये तो बाएं हाथ का खेल है, है? ये कुष्ठ रोग हो गया और इसको दूर करना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इसके माध्यम से जो संताप उत्पन्न हुआ है असाधा के उदय में उसको आसानी से दूर किया जा, इतने कॉन्फिडेंस ठोकर के और भक्ति शुरू कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में अपनी स्थिति भी स्पष्ट करते जा रहे हैं कि मुझे जो संताप है वो मैं जीत लूंगा, आपकी भक्ति से ही जीत लूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आप डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंतित मत होना, हाँ वो मैं कर लूंगा सब, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी भक्ति के द्वारा तो मैं अपने कर्मों को भी जीत सकता हूं, फिर ये छोटी मोटी चीज काहे को, मैं इसके लिए आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं, आप धोखे मत रहना। महाराज भगवान को कह रहे हैं क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं आपसे इस बात की प्रार्थना करूंगा कि मेरा रोग ठीक कर दो, ऐसी प्रार्थना मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति से जब मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता हूं, तो ये मेरे असाता के उदय में कोई छोटा मोटा सा रोग मुझे हो गया है तो मैं उसे आसानी से जीत लूंगा आपकी भक्ति के माध्यम से, जैसे कि वृक्ष के नीचे पहुंचकर उससे याचना नहीं करना पड़ती कि छाया दे दो, ऐसे ही मुझे आपसे कोई याचना नहीं करनी है कि मेरे कर्म काट दो, वो तो मैं आपकी भक्ति करूं, और जितनी मेरी भक्ति होगी उतने ही कर्म कटेंगे, आप नहीं काटेंगे, आपके प्रति मेरे मन में जितनी भक्ति होगी, मेरे मन में जितनी श्रद्धा होगी, उस श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ऑटोमेटिकली मेरे सारे संताप मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, इतनी निष्प्रयता बताइएगा, और इतना भगवान के प्रति अटूट विश्वास, ऐसा भक्ति में अगर हो तो बहुत सारी चीजें आसानी से हो सकती हैं, ये इसका पहले पद का भाव है। और फिर कह रहे हैं भगवान से ज्योति रूपम, हमने तो सुना है कि आप ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश देने वाले हैं, ज्योति स्वरूप हैं, दुरित निवाह ध्वांत विध्वंस हेतु, दुरित का मतलब पाप, निवाह का मतलब समूह, और ध्वांत मतलब अंधकार और उसको नष्ट करने में, पाप रूपी समूह के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं वो सूर्य, तो या कि दीपक तो प्रकाश करता है तो सिर्फ अंधकार को दूर करता है, और आप तो मेरे भीतर और प्राणी मात्र के भीतर बैठे हुए पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले ज्योति स्वरूप हैं। देखना भगवान की भक्ति इस तरह कर रहे हैं, त्वामेव आहु जिनवर चिरम तत्व विद्याभियुक्ता, और मैं अकेला नहीं कहता हूं ये बातें, हे जिनेन्द्र भगवान जो तत्व विद्याभियुक्ता अर्थात विशिष्ट सात तत्वों के ज्ञान से युक्त जो गणधर परमेश्वर जी भगवान हैं, बेतक आपके लिए ऐसा ही ज्योति स्वरूप मानते हैं, अच्छे अच्छे तत्व को जानने वाले लोग आपको ज्योति स्वरूप, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, ऐसा साथ में अपनी अल्पता भी बता रहे हैं, मैंने तो सुना है सभी कहते हैं ऐसा कि आप ज्योति स्वरूप हैं और आप पाप के अंधकार को नष्ट करने वाले, अच्छा भगवान ये तो ही आपकी प्रशंसा, अब मैं अपनी बात आपसे कह लूं क्या, चेतो वासे भवसी च मम, और अब मेरे मन रूपी ग्रह में मैंने अपनी भक्ति के द्वारा आपको बुला लिया है, चेतो वासे भवसी च मम, मेरे मन रूपी मंदिर में आप पधारे हो, और क्या क्या कर रहे हो, स्फारम उद्भास माना और एकदम प्रकाशित हो रहे हो आप मेरे भीतर, मेरी भक्ति में आप मेरे हृदय में आ गए हैं जब मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, और इतने ही नहीं आप मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं। अब बताइए तस्मिन नमः कथमिव तमो वस्तु तो वस्तु वस्तु मिष्टे, तब फिर मेरे भीतर क्या कोई पाप का अंधकार शेष रह जाएगा? जब आप मेरे हृदय में आओगे और प्रकाशित हो रहे हो तो मेरा तो सारा हृदय का पाप रूपी अंधकार अपने आप ही भग जाने वाला है। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। एक बार झगड़ा हो गया था और अंधकार ने जाकर के कोर्ट में और रिट दायर कर दी थी कि ये प्रकाश को समझा लो, ये तो बहुत उपद्रव करता है और हमारी ये हमें हर जगह से भगा देता है, भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए। तो फिर जज ने भी ये कहा कि सुनो हम एक अकेले से कोई निर्णय नहीं दे सकते, दोनों साथ में आना फिर बाद में बात करेंगे। वो आज तक नहीं आया वो साथ में और वो साथ में आ ही नहीं सकता, या तो प्रकाश रहेगा या कि अंधकार रहेगा, दो में से एक कोई। ये एक उदाहरण है इसका कि भगवान जब आप मेरे भीतर मेरी भक्ति से मैंने आपको बुला लिया है और आप प्रकाशित हो रहे हैं, ज्योति स्वरूप है, तो फिर मेरे भीतर जो पाप का अंधकार है जिसकी वजह से मुझे ये व्याधि हुई है, व्याधि मेरे किसी असाता कर्म की वजह से हुई है, जब मेरे असाता कर्म ही नष्ट हो जाएगा तब फिर ये व्याधि व्याधि अपने आप ठीक हो जाने वाली है, मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। बताइएगा इतनी निश्चिंतता से और अपनी बात जैसे कि नहीं मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया और अपनी भक्ति भी प्रदर्शित कर दी। ये दोनों पद इसी तरह के हैं। कुछ शब्दों के अर्थ अगर आप चाहें, वस्तुतः मतलब होता है निश्चित ही, और वस्तुमिष्ठे वस्तु जो है वो निवास करने के अर्थ में है। वस्तुमिष्ठे अर्थात कौन उस निवास वहां कौन निवास करने में समर्थ हो सकता है, अंधकार वहां समर्थ नहीं है निवास करने में जहां की प्रकाश आ गया है, इस तरह से इसका भाव है। मैंने इसको थोड़ा सा हिंदी में और दो पद लिखे थे वो दोनों सुनाता हूं, फिर अपन थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लें। मेरे साथ स्वयं ही मानो एक मेक जो हुआ कर्म का बंधन, भव भव में भारी दुख देता दुर्निवार हो, हे जग सूर्य तुम्हारी भक्ति उससे मुक्त मुझे कर देती, तब कौन और संताप जगत का जिसे नहीं जीता जा सकता। सारे संताप आपकी भक्ति से जीते जा सकते हैं। तुम जिन ज्योति स्वरूप तत्व विद्याविद गणधर, तुम्हें मानते पाप तिमिर हरने वाला, अब तुम मन मंदिर में मेरे हो आलोकित, करते प्रचुर प्रकाश, तो पाप तिमिर अब कहां रहेगा, वहां नहीं अवकाश, उसे रहने के लिए अब स्पेस ही नहीं है, तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ये भगवान की भक्ति अपन ने करी। थोड़े से क्वेश्चंस कर लें। एक घड़ी में 10 मिनट कम 11 और एक घड़ी में 20 मिनट कम 6, कौन सी सही माने? 20 मिनट, दो रखी हुई दो में से दोनों सही नहीं है, एक सही है नहीं, दूसरी भी सही हो सकती, जब 10 कम 11 होंगे तब वो भी सही हो जाए। थोड़े क्वेश्चन है आज, दो तीन क्वेश्चन है। मुनि महाराज की पिच्छी मोर के पंख की ही क्यों होती है, जबकि मोर मांसाहारी पक्षी है, कबूतर की भी हो सकती है क्योंकि कबूतर तो बहुत शांति प्रिय है। अरे वाह, कबूतर क्या मांसाहारी नहीं है? वो भी है, सभी पक्षी हैं। वहां पर अपन को ये चीज नहीं देखनी है, वहां पर तो हमारा सहज रूप से जिस चीज से काम चलता है वो चीज हमें परंपरा से भी जो चली आ रही है। मयूर पंख जो है अत्यंत शुद्ध माने गए हैं क्योंकि मयूर समय आने पर उन्हें अपने आप छोड़ देता है, वो विसर्जन का प्रतीक है, अतिरिक्त अपने पास संग्रह करके नहीं रखता, वो अपरिग्रह का संदेश देता है, हमें उसकी इस क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मयूर के पंख की विशेषता है कि वो पसीना ग्रहण नहीं करता, धूल ग्रहण नहीं करता, अत्यंत कोमल होता है और बहुत सुकमाल होता है, आंख में पंख डाल देने के बाद भी कोई क्षति नहीं पहुंचती और इतनी बड़ी होने के बाद भी पीछी वेटलेस ही रहती है, चींटी के ऊपर भी ऐसे रख दी जाए तो चींटी उसके नीचे से आराम से मूव कर सकती, जबकि लगेगा कि इतनी हैवी है, लेकिन उसकी हैवीनेस बिल्कुल सॉफ्ट लाइट हो जाती, इसके पंख के जो टो है उसकी अपनी विशेषता है, वो सारे वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचती। इसके अलावा और कोई भी चीज रखी जाएगी उसके लिए बहुत सारे उपाय करना पड़ेंगे। अगर इसकी जगह पर कपड़े की या कि वूलन की या कोई और उपयोग की जाए, या कि आप कह रहे हैं कि पंख उसके कबूतर के ले लें, गिद्ध पक्षी के पंख ले लें, और भी हैं, लेकिन उनमें ऐसी विशेषताएं, पांच विशेषताएं जो इन पंखों में हैं वो अन्यत्र नहीं होती हैं। और अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने संयम के पालन के लिए, हिंसा से बचने की दृष्टि से। और बड़ी शास्त्रित है, मुनि जन विचरण करते थे जंगलों में और वहीं पर उनके लिए मयूर पंख इजीली अवेलेबल थे, आज भी इजीली अवेलेबल है, आज भी लोग कलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो स्वयं कलेक्ट कर लेते थे, अब शावक उनको इकट्ठे करके लाता है। ये बड़ी भ्रांति इन दिनों प्रचारित की जा रही है कि मयूर को मार करके पंख लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ध्यान रखें कि मयूर राष्ट्रीय पक्षी है, उसका मारना तो वर्जनीय है। और दूसरी बात, एक मयूर से एक साल में 100-150 पंख मिलते हैं और एक बढ़िया पंख 30 पैसे का आता है। अगर हिसाब भी लगाएं तो थोड़े से पैसे ही मिलेंगे मयूर को मार करके पंख लेने पर। कोई भी व्यक्ति मयूर के पंख के लिए मयूर को नहीं मानता, मांस के लोलुपी जीव उसे कुछ भी करें हम नहीं कह सकते, चोरी छिपे और पकड़े भी जाते हैं, पर मयूर पंख के लिए तो मारने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो ऐसा हो गया कि सोने देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया कि और मिलेंगे भीतर, एक और नहीं मिलेगा फिर, और रोज एक एक मिल रहा था, साल में 100-150 पंख मिल जाएंगे जीवित रहने पर, आप मार देंगे तो क्या मिलने वाला उससे, उसके लिए कोई नहीं मारता। दूसरी चीज, अगर इसको आप, मैंने पता किया यहीं आपके आसपास तो राजस्थान में बहुत इनका वो है मयूर का, और पंख भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। ये जो इसका ओरिजिनल शेप है, ये ओरिजिनल शेप ये है, तो मयूर के ये पंख अगर उसको मार के लिए जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये उसका जो चंदोबा जैसा कहलाता वो खुलता नहीं है, वो मयूर को मार करके पंख खींच करके निकाले गए होंगे तो ये बंद मिलेगा आपको, एक चीज। दूसरी चीज, ये इतनी छोटी नहीं होती, ये दो हाथ के बड़े बड़े होते हैं, उसके आखिरी में एक टो होती है जो कि हार्ड हो जाती है, जब तब मयूर को चुभने लगती है तब वो वहां से उसको हटा देता है, और उस टो पर अगर मार के लिया होगा तो एक ना एक ब्लड का पार्टिकल तो मिलेगा ही, कितना भी आप उसको साफ कर देंगे। इससे मालूम पता कर लेते हैं कि ये मयूर को मार के लिया गया है या कि जीवित मयूर से निकाला गया है। अगर मार के लिया गया होगा तो अपने आप पता लग जाएगा, मुरझाया हुआ पंख और पीछे टो पर ब्लड पार्टिकल्स। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि इसमें, इसकी प्राप्ति में कोई हिंसा होती है या कि कहना चाहिए और भी कोई दोष इसमें है। अगर ऐसा होता तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जैसे महान ज्ञान को धारण करने वाले आचार्य इस तरह की चीज क्यों प्रपोज करते, इस तरह की क्यों सजेस्ट करते, मुनियों के ग्रहण करने के योग्य है। इसलिए ये आपकी शंका का समाधान हो गया। आपने एक दिन हमें जैसे प्रेम और मोह का अंतर समझाया था, ऐसे ही मान और स्वाभिमान का भी बता दीजिएगा, वो हमें नहीं मालूम। देखो, अहंकार अभिमान और स्वाभिमान और निरहंकार और निरभिमान, ये इतने शब्द हैं। अपनी योग्यता से ज्यादा सम्मान की आकांक्षा रखना ये कहलाता है अहंकार। क्या अपनी योग्यता से ज्यादा सम्मान मिले, मुझे मान मिलना चाहिए, योग्यता है ही नहीं और मान चाहिए, ये कहलाएगा अहंकार। मुझे मेरी योग्यता के अनुसार मान मिले, सम्मान मिले, ये कहलाएगा अभिमान। योग्यता से ज्यादा तो नहीं चाहिए पर जितनी योग्यता है उतना मिलना चाहिए, ये कहलाएगा अभिमान। अहंकार से भी थोड़ा रिफाइन और स्वाभिमान, मुझे सम्मान नहीं चाहिए लेकिन जहां मेरा अपमान होगा वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा स्वाभिमान। क्या मेरी योग्यता से ज्यादा सम्मान मिले, अहंकार। मेरी योग्यता का सम्मान होना चाहिए, अभिमान। और मेरी योग्यता का मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन कोई अपमान करे ये भी मुझे स्वीकार नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा स्वाभिमान है। और निराभिमान, अब चाहे तुम सम्मान करो और चाहे अपमान, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहलाएगा निराभिमान, निरहंकार, वो स्थिति बहुत ऊंची है। अपन तो अभिमान और स्वाभिमान के बीच झूलते रहते हैं, है कि नहीं? जहां अपनी योग्यता का सम्मान नहीं होता, थोड़ा मन जो है दुखी होता है, वही हमारा अभिमान है। लेकिन कभी कभी हमारी योग्यता का सम्मान नहीं मिलने पर भी हमें दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई उसका थोड़ा बहुत अनादर करता है तो थोड़ा मन को चोट पहुंचती है, वो कहलाएगा स्वाभिमान। अपने पद की गरिमा बनाए रखना ये स्वाभिमान कहलाए। जिस पद पर हम हैं उस पद की गरिमा बनाने का जो बनाए रखने का जो भाव है वो कहलाएगा स्वाभिमान। सम्मान तो नहीं चाहिए, पर अपमान अगर होता है तो उस जगह को छोड़ देंगे, उस जगह पर नहीं जाएंगे, ये कहलाएगी पद की गरिमा या पद का स्वाभिमान। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि स्वाभिमान झट से अभिमान में बदल सकता है। बड़ी सी बारीक सी रेखा है दोनों के बीच, अभिमान और स्वाभिमान के बीच में, ये स्वयं अपने परिणामों से अपन जान सकते हैं। पर सब में मान कषाय का उदय तो है, तीव्र है, मंद है और मंदतर है, मंदतम है बस। लेकिन जब निराभिमान हो जाते हैं तब फिर वो मान कषाय के अभाव वाली स्थिति कहलाएगी। ये दोनों हमने आपको क्लियर कर दिए। अगर किसी की बड़े के द्वारा छोटे का अपमान किसी दूसरे छोटे के सामने हो तो क्या करें? अरे वाह, तब क्या करें? देखो भाई, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो बड़ा तो तभी कहलाएगा जब वो छोटे का सम्मान करे, नहीं तो वो भी छोटा हो गया। ये ध्यान में रखना, बड़ा कोई कब होता है? जबकि अपने से छोटे को भी सम्मान की दृष्टि से ही देखता है। नहीं तो जो आपसे झुककर मिला होगा, मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा, हैं? हाँ, जो आपसे अकड़ के मिला है तो समझना बहुत छोटा है, और जो आपसे झुक के मिलता है इसका मतलब वो बड़ा है जरूर से, जब तो वो झुक के मिल रहा है। तो ये बड़प्पन है कि वो अपने से छोटे के प्रति भी और अपना सम्मान का भाव रखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर इसके मायने हैं कि वो बड़ा रह ही नहीं रहा। तब फिर हमारा फर्ज है कि हम उसके प्रति, कम से कम हमारा फर्ज तो बनता, छोटे का फर्ज तो बनता है कि अपमान हो जाने के बाद भी बड़े के द्वारा होने वाले अपमान को अपमान नहीं मानना। आज के समय में यह बात भी बहुत जल्दी से माने आ जाती है लोगों के मन में। अपने ही माता पिता अगर अपने किसी मित्र के सामने अपने बेटे की या बेटी की कोई बात उसको कड़ी कह देते हैं तो बड़ी इंसल्ट फील करते हैं कि हमारे कलीग्स के सामने और हमारे अपने दोस्तों के सामने हमारे माता पिता ने हमारी इंसल्ट कर ली, बड़ा फील करते हैं। जबकि उस समय हमें गौरव होना चाहिए इस बात का कि चलो देखो तो हमारे माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हम अगर कहीं गड़बड़ हो जाते हैं तो हमें वो संभाल लेते हैं। हमें मित्रों के बीच इंसल्ट फील नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि क्या तुम्हारे पिता या तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह टोकती है किसी काम के लिए? मुझे तो मेरी माँ हमेशा टोक देती, मैं अगर कहीं गलत होता हूँ तो मुझे टोक देती, सही होने पर भी मुझे टोक देती, वो हमेशा मुझे सावधान रखती है। मेरे पिता मुझे हमेशा सावधान रहने को कहते हैं, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि वे मेरे भले के लिए कहते हैं। ऐसा पॉजिटिव अगर अपन ले लें तो फिर तो कोई अपमान की बात ही नहीं है। लेकिन अपन तो झट से नेगेटिव ले लेते हैं कि इतने बड़े होकर के भी और छोटों को हमको डांट रहे हैं ये छोटी छोटी बात पर। अपनी गलती होती हुई भी अपन नहीं चाहते हैं कि कोई हमें डांटे। देखो तो जब हमसे कुछ अच्छा हो जाए तो हमारी पीठ थपथपाई जाए, जब गलत हो जाए तो डांटा ना जाए, माफ किया जाए। ये तो आधा अधूरा हिसाब है। जब आप किसी भी अच्छी चीज का पुरस्कार चाहते हैं तो अपने द्वारा की गई बुरी चीज का दंड क्यों नहीं चाहते आप? तो ये तो आपका अभिमान या अहंकार कहलाएगा। आपको भी अपने अभिमान या अहंकार को, जिसने लिखा है उसको, अपने अभिमान और अहंकार को भी जीतना चाहिए। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपन को कहता है तो अपना अपमान महसूस नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें हैं, और हमने पहले ही कह दिया कि जो बड़े लोग हैं उनको भी छोटों का सम्मान करना चाहिए। आप अपने से छोटे से आप करके बात करेंगे तो वो भी आपसे बात करेगा, आप तू तड़ाक की बात करेंगे तो वो भी तू तड़ाक से बोलेगा, सीधा सीधा हिसाब है। मन में बहुत राग द्वेष उत्पन्न करें या नहीं, नहीं राग द्वेष तो नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच ही रहना चाहिए। कई लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, फिर कहते हैं कि अगरबत्ती जलाकर दीप जलाकर करने से भी जाप से जप का फल मिलता है, क्या ये आडंबर नहीं है? तथा फल की आशा के लिए जाप का क्या कोई मतलब है? विधि विधान क्या आडंबर है? सीधे अपने आप साधना करने से, सीधे सच्चे रहने से क्या मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता है? अच्छी बात है, इसमें क्या, इसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं। आप अगर जो है सरल और सच्चे रह करके अपना कल्याण कर रहे हैं तो करने दीजिएगा। कोई व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के विधि विधान, विभिन्न प्रकार के जप तप, इन्हीं के द्वारा अपना कल्याण करता है तो उसको वैसा करने दीजिएगा। आप उसको आडंबर क्यों मान रहे हैं? हाँ, ये विचारणीय बात है। दूसरा जो करता है उसे गलत मानना और आडंबर मानना, इसके मायने है कि आप अपने आप में सीधे सच्चे और सरल तो नहीं है, ये तो तय हो गया। दूसरे को बुरा कहने वाला ये तय हो गया कि स्वयं भला तो नहीं है, दूसरा बुरा होए सो होए, लेकिन दूसरे को जो बुरा कहता है वो स्वयं भला नहीं है ये तय है। और जो दूसरे को भला कहता है तो दूसरा भला हो चाहे नहीं हो, कहने वाला तो भला आदमी है जो दूसरे को भला कहे। युधिष्ठिर महाराज अगर निकल जावे संसार में तो एक और बुरा आदमी नहीं मिलने वालों, युधिष्ठिर महाराज जाए और दुर्योधन महाराज जाए तो एक और भला नहीं मिलने वाला। तो ये तो दृष्टिकोण है। आप दूसरे के बारे में जितना हमने आपको कहा था, ए कॉमन मैन थिंक अबाउट ए पर्सन, ए मीडियम मैन थिंक अबाउट इवेंट्स, और जो बहुत हायर होते हैं वे आइडियल्स और आइडियाज, इन पर ही डिस्कशन करते हैं। क्या श्रेष्ठ हो सकता है और किस तरह उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, आदर्श क्या है, उस पर जो लोग विचार करते हैं। अधिकांश लोग व्यक्ति या घटना, यहां पर ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को वो कहेंगे ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो इसका मतलब है कि आप तो ठीक हो ही नहीं, ये पक्का हो गया। कई लोग कहते हैं मंदिर में बड़ा शोरगुल होता रहता, बताओ तो कोई पूजा कर रहा ठाट बाट से, ओ भैया को शोरगुल मालूम पड़ रहा, इसका मतलब है कि आपने कभी पूजा का आनंद लिया नहीं, इसलिए आपको पूजा भी शोरगुल मालूम पड़ रही। विधि विधान भी आपको अपनी बेटी की शादी में और भारी लाख 2 लाख रुपए का पेंडाल और झगरमगर लाइट और दुनिया भर की चीजें, वो है आडंबर। हाँ, धर्म ध्यान करने में पूजा विधान इत्यादि को आडंबर कहना, ये तो इसके मायने हैं कि हमारे भीतर कोई चीज गड़बड़ा गई है। हाँ, हमारा दृष्टिकोण कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, हम नेगेटिव ले रहे हैं, उसका जो सही पहलू है उसको नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हमें अपने पूजा विधान इत्यादि जो हम करते हैं उनमें भी जितना कम से कम बाह्य दृष्टि ना रहे, अंतरंग के परिणामों की निर्मलता हमारी दृष्टि रहे और बाह्य आडंबर ना हो, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन सभी पूजा विधान बाह्य आडंबर ही है ऐसा नहीं कह सकते। हम ठाट बाट से अपनी द्रव से पूजा कर रहे हैं, हमने ना कोई तामझाम किया है ना हमने और कोई आडंबर किया है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि आडंबर है, दिखावा है? नहीं, मेरे आत्म कल्याण के लिए पूजा करता हूं तो दिखावा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना ऐश्वर्य बताने के लिए और भारी से भारी और आयोजन करके और लाखों रुपए खर्च करके फिर कहता है कि मैंने सिद्ध चक्र की पूजा करी, तो फिर मान सकते हैं कि सिद्ध चक्र की पूजा तो आप प्रेम से मंदिर में भगवान के सामने आसानी से कर सकते थे, इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं थी। ये बात तो ठीक लगती, लेकिन पूजा को ही आडंबर कह दें अपन, विधि विधान को ही आडंबर कह दें, ये बात कुछ मुझे रुचिकर नहीं मालूम पड़ती। और रही बात इसकी जो आप कह रहे हैं कि फल की आशा से जाप करने का कोई मतलब नहीं होता, भैया दो प्रकार की भक्ति होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, और कामना भी दो प्रकार की होती, एक सांसारिक और एक पारमार्थिक। निष्काम भक्ति कोई करता हो तो मुझे उससे मिलवा देना, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, हाँ, अगर आपको कहीं मिले कोने कांतर में कहीं लाइट लेकर के ढूंढना, अगर कहीं निष्काम भक्ति मिलने करने वाला मिल जावे तो हमें बताना, हम उससे मिलकर के बड़े प्रसन्न होंगे। बाकी अपन तपन सब लोग सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति दो प्रकार से करते, एक सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अज्ञानता की वजह से, क्योंकि अपन को थोड़ी सी अपने अंदर कमी है, ये अपनी कमजोरी है कि अपन सांसारिक आकांक्षाएं मांगते हैं। और मांगना क्या चाहिए, दुख कहो कमक कहो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाही मरणम, ज्यादा क्या मांगे भगवान, जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। मैं तो इस कामना से कर रहा हूं कि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति, आपके जैसे गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो। बताइए ये सकाम भक्ति है कि नहीं है, कि निष्काम भक्ति है? ये सकाम भक्ति है, ये तो करना ही पड़ेगी। दुखों का क्षय हो तो भगवान कहते कर्म का क्षय करो तो दुखों का क्षय होगा। तो कमक हो वो ही लाओ, जब बोधि की प्राप्ति होगी तब कर्मों का क्षय होगा, और जब कर्मों का क्षय होगा तो दुख का क्षय होगा। और बोधि की प्राप्ति होने पर भी सुगई गमनम समाहि मरणम, हाँ भली गति के लिए समाधि मरण करना तब जाकर के और संसार से पार होगे। ये सारी चीजें मांगते हैं अपन, और फिर अंत में मांग लेते हैं कि भगवान आपके जैसे गुणों की प्राप्ति। इसको तो सकाम भक्ति कहेंगे, लेकिन ये परमार्थ की है। और दूसरी लड़का बच्चा मिल जावे, हमारा काम अच्छे से चले, और भैया उसमें भी बुराई नहीं है, कौन और कोई से मांगो, अपन ने अपने ही भगवान से तो मांगो है। और कहां जाए, कौन के पास जाए, का कहें, अपन किससे मांगे, किसके सामने भीख मांगे, हाथ फैलाए। तो हमने तो अपने भगवान के सामने हाथ फैलाए कि भगवान जब देखो, हम बताएं अपन को कल का इंतजाम है भोजनों का, इसे बैठे हैं अच्छे से, ना उतर ठीला लगाए होती अगर एक 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 जून को भोजन कमाने पड़त हो तो, जिसके ऊपर बीतती वो जानता है, अपने पास पूर्व पुण्य खूब अर्जित है, स्वपन शांति से धर्म ध्यान कर रहे, नहीं तो धर्म ध्यान भी नहीं सूझता। अगर संसार की जितनी आवश्यकताएं हैं वे पूरी ना हो तो धर्म ध्यान नहीं सूझता। ऐसे विरले लोग होंगे जिनकी सांसारिक आकांक्षाएं कुछ भी नहीं हो और धर्म ध्यान करते हो। इसलिए अगर कोई इस तरह की भावना भी रखता है तो एकदम से उसको बट्टे खाते में नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि उसने जितनी देर भी की है मन वचन खाए से पूजा, भले ही उसने कुछ आकांक्षा रख के की है, पर उसने भी कर्मों की निद्रा नहीं करी, पुण्य का अर्जन तो उसने भी किया है। अगर हम कुछ नहीं मांगे या कि परमार्थ मांगे तब तो कर्मों की निद्रा भी होती है और पुण्य का अर्जन भी होता। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा और विचार करिएगा, आपने जो लिखा है उससे मैं असहमत तो नहीं हूं, पर उसमें थोड़ा सा संशोधन करिए तो और अच्छा लगेगा। महाराज 108 बार गिनकर कोई भी जाप किया जाता है उसके मंत्र पर कम ध्यान रहता, 108 पर ज्यादा। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि महीने भर में 15 हरी सब्जी खाएंगे तो 15 की गिनती पर ज्यादा ध्यान रखता, क्या ये आर ध्यान नहीं है, क्या ये प्रपंच नहीं है? ठीक है, एक दृष्टिकोण तो ये भी है कि अगर हमारा काउंटिंग पर ही ज्यादा ध्यान है तो ठीक नहीं है। कल तक रुपए गिनते थे आज माला गिनने लगे, ऐसा सामान्य रूप से तो यही आएगा देखने में कि अब माला गिन गिन के दे रहे, अरे भगवान को नाम लेने तो का गिनने, चाहे जितनी बार दे लू है, ऐसा मन में भाव आता है। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसका। एक पहलू तो ये बिल्कुल सही है कि हम गिन गिन करके कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें हमारा ध्यान उस पर ज्यादा रहता है, उसके पीछे जो उद्देश्य छिपा है उस पर कम रहता है, एक चीज। लेकिन दूसरा पहलू भी है, मैं इतनी सावधानी से इस जाप को दे रहा हूं कि ना 107 और ना 109, 108 इतने कंसंट्रेशन के साथ। क्यों 107 और क्यों 109? मैंने तय किया है कि 108, यानी एक एक नमोकार मेरे सामने में गुजरेगा, जरा भी गफलत नहीं होगी, जरा भी आलस नहीं आएगी, मैं बिल्कुल एक एक नमोकार को सजग रूप से बोल रहा हूं, ध्यान रख रहा हूं कि ये एक बार हो गया, ये दो बार, ये तीन नमोकार, चार नमोकार हो गया, 108, 107 क्यों, 109 क्यों। ये कंसंट्रेशन की अपेक्षा से भी 108 बार किया जा सकता है। 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, मैं उस सबको खाने की अंदर आकांक्षा रख सकता हूं, मैं उस आकांक्षा से बचने के लिए 15 रख रहा हूं, बाकी कम से कम बाकी की चिंता तो छूट गई, उन्हीं 15 के भीतर डोल रहा हूं मैं। देखना आप, पहले तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति का भाव आ सकता था, जितनी जौन सी भी आ जाए वो खा लेंगे, लेकिन अब सब नहीं खाना है, सावधान रहना। अपन ने जो 15 की सीमा करी उससे ही ये वाली 15 से बाहर जा रही, नहीं खाना। ये भी तो है एक पॉजिटिव। ये बात अलग है कि फिर हमारी उन 15 में ही आसक्ति ज्यादा हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कल तक तो चाय जौन सी खा लेते थे, अब तो बाहे ही नहीं है, वही हमने रखी थी, सोची थी कि जैले हैं, जा तो है ही नहीं, अब संकलेश कर रहे हैं, तो संकलेश भी संभव है। देखो भैया, त्याग में दोनों बातें हैं, त्याग में आत्मा का आनंद भी आ सकता है, और त्याग अगर अज्ञानता पूर्वक किया होगा या कि अपनी शक्ति से ज्यादा किया होगा तो संकलेश का कारण बनेगा। इसलिए जब भी चारित्र ग्रहण किया जाता है, सच्ची श्रद्धा और आत्मज्ञान पूर्वक ही किया जाता है, उन्हीं के द्वारा जो त्याग इत्यादि है वो शोभा देता है और दूसरे को भी मैसेज मिलता है, अन्यथा आध्यान और संकलेश भी संभव है। ऐसा पूरा विचार आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आधी अधूरी बात ही नहीं। हर एक को ऐसा ही होता हो, जिसने 15 सब्जी रखी है उसको हमेशा आर्ध्यान ही होता हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। वो उसने जितना आर्ध्यान होता था 10 लाख प्रकार की वनस्पति, वो तो छोड़ दिया, उसकी आकुलता तो खत्म हो गई। जैसे रात्रि में भोजन करने की आकुलता है और अपन ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो भोजन करने की आकुलता मिट गई, लेकिन अपनी शक्ति कम है तो भोजन का विकल्प आ जाता है, थोड़ा बहुत की भूख लगाई, ये तो संभव है, लेकिन खाऊं इस तरह का विकल्प नहीं, उस विकल्प से तो मुक्त हो गया। अब धीरे धीरे सहन शक्ति आ जाएगी तो विकल्प भी नहीं उठेगा कि खाऊं इस तरह का, ये दोनों चीजें सोच लेना चाहिए। अच्छा, ये जो है आपके दर्शनार्थ आ सके, हमारी माँ बहुत अस्वस्थ हैं, उठ बैठ नहीं पाती हैं, कोई ऐसा मंत्र का जाप बता दें जिससे कि वे दर्शनार्थ आ सकें, उनका मंत्र रोज का जाप भी वो उस मंत्र का करना चाहती हैं। भैया, अपने यहाँ पर तो सारे असाता कर्मों से बचने का एक ही उपाय है, पंच परमेष्ठी का स्मरण, चाहे जिस रूप में करो हैं, पंच परमेष्ठी का, चाहे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्ञाणम, नमो लोय सब साहुणम, इस रूप में करो, चाहे ओम रीम 80 आउसा नमः करो, चाहे ओम नमः सिद्धेव्या कहो, चाहे अरंत अरंत अरंत, चाहे सिद्ध सिद्ध सिद्ध, या अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध, किसी भी रूप में, या ओम पांचों परमेष्ठी, जितना भी ये पंच परमेष्ठी वाचक जितने भी मंत्र हैं, आप किसी को भी पकड़ लीजिएगा एक को, और उसको लगातार अपने कर्मों की निद्रा का भाव रख करके, मेरे असाता की वजह से मुझे व्याधि है, लेकिन उस व्याधि के बावजूद भी मैं कम से कम उसे सहन करने की शक्ति पालू, व्याधि मेरी दूर हो जाए वो तो संभव नहीं, मेरे असाता के उदय से है, लेकिन उस व्याधि के बावजूद भी मैं अपना धर्म ध्यान करता रहूं, इतनी सामर्थ देना। हाँ, गीतांजलि में लिखा उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि हे भगवान, मैं आपसे ये विनती नहीं करता, ना ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप मेरे दुखों को दूर कर दें, नहीं, मैं तो ये कहता हूं, ये मांगने आया हूं कि जब मेरे ऊपर दुख आए तब मैं उन्हें सहन कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य देना, बस मुझे दुख ही ना आए मैं ऐसा नहीं मांगता, दुख तो आएंगे मेरे अपने कर्मों की वजह से आएंगे, लेकिन उन दुखों के बीच भी मैं तुम्हें ना भूलूं और उस दुख को सहन कर सकूं, मैं अपने समता भाव बनाए रख सकूं, ये अपन को भावना बनानी चाहिए, उससे जो है वो आसानी से सारी चीजें दूर हो सकती हैं। भगवान के दर्शन करते हैं तो आप पीछे हाथ में रखते हैं, तो कमंडल क्यों नहीं रखते हैं? ठीक, हाँ, लेने जाते हैं तब तो पीछे कमंडल साथ में लेके जाएंगे, लेकिन जब भगवान के दर्शन करते हैं तो पैर धो लिए मंदिर से बाहर, कमंडल का उपयोग हो गया, अब कमंडल की क्या जरूरत, वहीं रख दिया, लेकिन पीछे तो संयम का उपकरण है, वो शुद्धि का उपकरण नहीं है, शुद्धि का उपकरण से शुद्धि कर ली और फिर संयम के उपकरण के साथ आकर के और भगवान के सामने पूजा आराधना करते हैं, इसलिए कमंडल नहीं रखते, पीछे लेकर के ही करते हैं, किसी बच्चे ने लिखा हुआ है। ठीक, मैत्री भाव जगत में मेरे
मेरा सब जीवों से नित्य रहे मैं जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं
रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं
बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं
भले तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं
औरों का उपकार करूं
औरों का उपकार करूं
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।